ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 5 विदुरस टॉक विथ मैत्रेय टेक्स्ट नंबर 2। विदुर उवाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपार पारं वा। विन्देत भूयः तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। ट्रांसलेशन। विदुर सेड, ओ ग्रेट सेज, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड एंगेजेस in the fruitive activities to attain happiness. But one finds neither satiation nor the mitigation of a distress. On the contrary, one is only aggravated by such activities. Please, therefore, give us directions on how one should live for real happiness. Purport. Vidura asked Maitreya some common questions, which was not originally his intention. Uddhava asked Vidura to approach Maitreya Muni and inquire into all the truths concerning the Lord, his name, fame, quality, form, pastimes, entourage, etc. And thus, when Vidur approached Maitreya, he should have asked only about the Lord. But out of a natural humility, he did not immediately ask about the Lord, but inquired into a subject which would be of great importance to the common man. A common man cannot understand the Lord. He must first know the real position of his life under the influence of the illusory energy. In illusion, one thinks that he can be happy only by fruitive activities. But actually, what happens is that one becomes more and more entangled in the network of association and reaction and does not find any solution to the problems of the life. There is a nice song in this connection. Because of a great desire to have all happiness in life, I built this house. But unfortunately, the whole scheme has turned to ashes because the house was unexpectedly set on fire. The law of nature is like that. Everyone tries to become happy by planning in the material world, but the law of nature is so cruel that it sets fire to one's schemes. The fruitive worker is not happy in his schemes, nor is there any satiation of his continuous hankering of happiness. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्यणसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखं वान्य उपारं वा विन्देत भूयस्ततयेव दुःखं यदत्र युक्तवान् भगवान् वदेन। तो यहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अलग अलग कर्मों में रत रहता है क्योंकि वो चाहता है सुख पाने। लेकिन होता कैसे इस जगत में ना तो सुख मिलता है और ना ही उपारम, ना ही वो मन में उसके तृप्तता रहती है। तो फिर ऐसे व्यक्ति जिसके मन में केवल दुख का ही और जिसके मन में दुख ही बढ़ते जाता है, तो यदत्र युक्तम भगवान वदन, तो कृपया आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मार्ग है कि जिसके द्वारा व्यक्ति जो वास्तविक आनंद है उसको प्राप्त कर सके। और तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि विदुर जी ने तो उद्धव जी को पूछा था कि आप कृपया मुझे उस दिव्य ज्ञान के बारे में बताइए जो भगवान ने आपको दिया। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि विदुर जी वहाँ जाते ही पहला प्रश्न उनको करते हैं क्या आप मुझे बताइए कि इस भौतिक जगत में जो सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाला जीव है, लेकिन वो प्रयास करते समय सुख नहीं और ना ही तृप्तता, बल्कि उसको केवल दुख प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। विदुर जी जानते हैं क्योंकि ये प्रश्न, हालांकि उनको अंतर मन से ये प्रश्न नहीं पूछना था मैत्रेय ऋषि को, बल्कि आप हम जैसे जो जीव है उनके लिए वे यहाँ पे पूछते हैं कि वास्तविक आनंद क्या है, वास्तविक आनंद की व्याख्या क्या है और उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे, अगले श्लोक में ही वे बताते हैं एक्चुअली, मैत्रेय ऋषि को पूछते हैं कि व्यक्ति की पात्रता क्या है इस वास्तविक सुख को प्राप्त करने के। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बड़ी नम्रता से विदुर जी मैत्रेय ऋषि को ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं इस भौतिक जगत में 99% लोग माया के चंगुल में फंसे हुए हैं और ऐसी स्थिति में वास्तविक सुख को जानना और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। फिर भी यहां पे इस श्लोक में सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखं वान्यद् उपारं वा विन्देत भूयस्ततयेव दुःखं यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। यहाँ पे बोलते कि आप बताइए, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ है वो क्या है, सौशील्य, सुशीलता, जो कि विदुर जी के पास थी और वे मैत्रेय ऋषि के पास गए और नम्रता से उन्होंने पूछा। आप सोचो कि भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार से एक निमित्त करके उपयोग में लाते हैं, अपने हर कार्य और भक्तों के ही स्तुति गान के लिए। अब पिछले अध्याय में हमने देखा कि उद्धव जी विदुर जी को बताते हैं कि भगवान जब इस भौतिक जगत को छोड़ के जा रहे थे तो उस समय उन्होंने आपको याद किया। ज़्यादातर हम उसी व्यक्ति को ज़्यादातर याद करते हैं, कहीं जाना है हमें तो जो जिम्मेदार है, जो अगर हम ना रहे तो उस चीज़ का वो अच्छी तरह से पूरी अच्छी तरह से उस चीज़ को पालन नहीं, जिम्मेदारी ले उसकी और उन कार्यों को वो कर ले। तो भगवान सोच रहे थे कि भाई कौन कौन कर सकता है, तो उन्होंने उद्धव जी को बोला कि आप एक काम करो, अब मैं यहाँ से जाने के पश्चात आप बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहाँ पे जो बड़े बड़े ऋषि हैं उनके साथ बैठकर व्याख्या करो, उनके साथ बैठ के मैंने जो आपको उपदेश दिया है वो आप उनको दे दो। और फिर वो याद करते कि विदुर भी हैं, यानी भगवान उनको जिम्मेदार समझते हैं कि ये व्यक्ति है जो इस कार्य को, खास करके जीवों को भगवान के तरफ लाने के लिए जो क्षमता चाहिए वो इनके पास है और ये व्यक्ति वो कार्य कर सकती है। और फिर उनको याद किया, फिर उन्होंने मैत्रेय ऋषि को याद किया और मैत्रेय ऋषि अपने पूर्व सौभाग्य के कारण वहाँ पे आके पहुँच गए और उनको भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि वे मिश्र भक्त थे लेकिन भगवान ने उद्धव के द्वारा, उद्धव को उपदेश करते समय मैत्रेय ऋषि को भी बहुत सारे शिक्षाएं दी जिनके कारण वे भी भक्त बन गए। और फिर जैसे घी में अगर शक्कर डालो तो जैसे स्वाद बढ़ता है, तो वैसे ही इस भक्तिमय तत्व को जानने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए वहाँ पे विदुर जी आके पहुँच गए। मैत्रेय ऋषि के ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि अगाध बोधम, उनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, असीम ज्ञान का भंडार थे। और ऐसे असीम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो गुण है वो बताया गया है यहाँ पे, जो विदुर जी के पास था, सौशील्य, सुशीलता, नम्रता। अरे इतने महान भक्त होने के पश्चात, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में युधिष्ठिर महाराज करते हैं कि भवत विदा भगवता तीर्थम भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि स्वान्तास्तेन गदाभृतः। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि, तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि यानी आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जो किसी भी स्थान पर चले जाए तो उस स्थान को आप तीर्थ बना सकते हो। जैसे तीर्थ के महिमा के बारे में कहा जाता है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थस्थाने विनश्यति, कि कहीं अलग जगह पे आपने पाप किया हो तो तीर्थों में जाके स्नान करने से उस पाप का नाश हो जाता है। और विदुर जी ऐसे व्यक्ति थे कि वे जहां पे जाए उस जगह को तीर्थ बना सकते थे। क्यों? तीर्थ यानी वो स्थान है जहां पे भगवत साक्षात्कार बहुत सुलभता से हो जाता है, इसी के कारण व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और विदुर जी ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके सानिध्य से, जिनके संग से, जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जिस ज्ञान के द्वारा आप भगवान को जान सकते हैं। जैसे नरोत्तमदास ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं कि गंगार परश होले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो मार्ग। अपने किए हुए पापों से मुक्त होने के लिए जीवात्मा को विशेष करके गंगा में स्नान करना पड़ता है तो व्यक्ति पावन हो जाता है। लेकिन वे यहाँ पे कहते हैं कि गंगा में स्नान करने के अलावा अगर व्यक्ति किसी वैष्णव का दर्शन कर लेता है तो उस दर्शन से ही वो पवित्र हो जाता है। तो विदुर जी ऐसे व्यक्ति थे, फिर भी बड़ी नम्रता से वे मैत्रेय ऋषि के पास गए और उन्होंने पृच्छा की कि आप बताइए मुझे कृपया करके, क्या बताइए, तो उस वास्तविक सुख को हम कैसे प्राप्त कर सकते। और प्रभुपद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जीवात्मा में भगवान के विरुद्ध कार्य करने की इतनी प्रबल इच्छा है कि उसी इच्छा के कारण इस भौतिक जगत में हम पड़े हैं। और प्रभुपद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जो ब्रह्मचारी रहता तो सोचता है कि मुझे इस भौतिक जगत के सारे सुख प्राप्त करने हैं, फिर उसके लिए वो प्रयास करना शुरू कर लेता है, विवाह कर लेता है। विवाह के पश्चात परिवार बढ़ने लगता है तो सोचता है कि मुझे इस परिवार के लिए घर बनाना चाहिए, और उसे ऐसे लगता है कि ये घर ही उसके सुख का स्रोत है। और प्रभुपाद फिर बताते हैं कि ऐसा एक गीत है जिसमें वर्णन किया जाता है कि मैंने इच्छा की कि सारे सुखों को मैं प्राप्त करूँ इसलिए मैंने घर बनाया, लेकिन नसीब का मारा मैं कि उस घर ही, वो घर ही पूरी आग में, आग के लपेट में आ गया और सारा नष्ट हो गया। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत के जो नियम हैं जो हर जीवात्माओं को भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो भक्ति करे या ना करे, हर व्यक्ति को उसने किए हुए कर्मों का फल तो प्राप्त होगा ही होगा। कई लोगों का ऐसे लगता है कि भक्ति करेंगे तो हम अपने पिछले जन्म के किए हुए कामों से मुक्त हो जाएंगे, कामों के परिणामों से मुक्त हो जाएंगे। अगर अन्य अभिलाषिता भक्ति करते हैं, अनन्य भक्ति कर लेते हैं, तो भौतिक जगत के कोई नियम आपके ऊपर लागू नहीं होते। जब तक नहीं है हम अतीत, गुणातीत, तब तक इस भौतिक जगत के सारे नियम हम पे लागू हैं। तो जो व्यक्ति अनन्य भक्ति कर लेता है, और जो भक्ति कर लेता है वो व्यक्ति फिर अपने, जैसे भगवान कहते कि मैं सारे पापों से उसको मुक्त कर देता, लेकिन जो अनन्य भक्ति नहीं करता है बल्कि अभी अभी उसने शुरुआत किया, प्रयास करना शुरू कर लेता है, तो धीरे 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 वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन परिणाम जो है वो अल्प मात्रा में हर चीज़ के भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में आया हो तो उन नियमों के अनुसार यहाँ के सुख या दुख हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। फिर आगे विदुर जी कहते हैं, जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे भगवान, इस भौतिक जगत में दूसरों के हित के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति नित्य रूप से विचरण करते रहते हैं, और भगवान की ओर से वे लोग इस भौतिक जगत में दुख भुगत रहे हुए
जो जीव है उन सारे जीवों को भगवान के सबॉर्डिनेट बनाना चाहते हैं कि जो भगवत सेवा में लगे रहे। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार चलना, ये जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। लेकिन पिछले जन्म में किए हुए पापकर्मों के कारण ये जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में इतना रत हो जाता है कि भगवान की इच्छा विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है, और उसी के कारण वो भगवान का जो प्रेम है या भगवान की जो भक्ति है उसे वो प्राप्त नहीं कर पाता। बल्कि होता क्या है फिर उसका, अभी ये जो चीज है ना इसको अच्छी तरह से सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण। प्रभुपाद कहते हैं यहां पे कि कर्मकांड, फिर ज्ञानकांड और सिद्धि प्राप्त करने की जो लालसा है, ये सारी चीजें जो क्या है मालूम है, ये हमें भगवान के विरोध में खड़ा कर देती है। सामान्यतः व्यक्ति कर्मकांड क्यों करता है, क्या कारण रहता है उसका? कर्मकांड में व्यक्ति विशेष करके कुछ ना कुछ फल प्राप्ति के लिए करता है, और फल प्राप्ति यानी क्या है, इंद्रिय तृप्ति। जैसे कर्मकांड में द्वितीय स्कंध में जैसे हमने पढ़ा कि अलग अलग देवताओं की उपासना करेंगे तो अलग अलग आपको फल प्राप्त होते हैं। जैसे कोई इंद्र की पूजा कर लेता है तो उसका काम जीवन अच्छा चलता है, कोई ब्रह्मा जी की पूजा कर लेता है तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में बहुत बड़ी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कोई व्यक्ति है जो क्या कहते हैं उसको, शिव जी की उपासना, तो इस जगत में वो कुछ ना कुछ ऐसा पद प्राप्त कर लेता है या अधिकार प्राप्त कर लेता है। उमा की कोई उपासना कर लेता है तो वो सुंदर पत्नी को प्राप्त कर लेता है। अश्विनी कुमारों की कोई अगर पूजा कर लेता है तो उसको अच्छा आरोग्य प्राप्त होता है। और ये कर्मकांड में यही बताया गया है कि इन देवताओं की पूजा करोगे तो ये, इन पूजा करोगे तो ये सारा प्राप्त होता है। तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की ओर और ज़्यादा प्रवृत्त हो जाता है, और यही प्रवृत्ति उसको भगवान से अलग कर देती है और भगवान के विरोध में खड़ा हो जाता है। फिर अपने आप को ही भोगी और सिद्ध, बलवान और सुखी मानना शुरू कर। फिर आगे बताते ज्ञान, एम्पिरिकल ज्ञान। प्रभुपाद खास करके बताते हैं कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति वैदिक ज्ञान जो है उसको केवल ज्ञान के स्तर पर ही प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद कहते विशेष करके ये जो मायावादी लोग है या निर्विशेषवादी लोग, जो निराकारवादी लोग, इनके पास तो वैदिक ज्ञान रहता है लेकिन ये वैदिक ज्ञान उनके हृदय को बहुत ही सख्त बना देता है। और किसी का हृदय सख्त हो तो होता क्या है उससे, जैसे जमीन ज्यादा सख्त हो जाती है तो उसमें बीज नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर बीज बोना है तो जमीन मृदु होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। तो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति विशेष करके अपने हृदय को सख्त बना देता है, जहां पे भक्ति लता बीज का अंकुर नहीं आता। और रहा फिर मिस्टिक, मिस्टिक यानी जो योगी है, योगी क्या करता है, तपस्या करता है, प्रचंड तपस्या कर लेता है। उस तपस्या के द्वारा वह अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, और जब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तो ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा से सारा हो रहा है, फिर ईश्वर भाव आ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहां पे कहते हैं कि कर्मकांड ज्ञान की प्राप्ति तथा योगिक सिद्धियां प्राप्त करना, ये हमें भगवान से दूर ले जाता है और भगवान के विरुद्ध में हमें खड़ा कर देता है, हम भगवान के शत्रु बन जाते हैं। ज्ञान से, क्योंकि हम मैं ही भगवान शुरू कर देना, सोहम, मैं वही हूं, मैं वही परब्रह्म हूं जो अभी माया के चंगुल में फंसा हुआ, लेकिन मैं अपनी शक्ति के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा, प्रयास के द्वारा फिर से भगवान बन जाऊं, तो ये भी शत्रुता ही हो गई ना। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद यहां पे कहते हैं कि ऑल फ्रूटिव एक्टिविटी, इंपेरिकल फिलोसॉफी, मिस्टिसिज्म आर मोर और लेस अगेंस्ट द सेंस ऑफ सबॉर्डिनेशन टू द लॉर्ड, एंड एनी लिविंग एंटिटी एंगेज इन सच अ रिबेलियस एक्टिविटीज इज मोर और लेस कंडेम्ड बाय द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर विच वर्क अंडर द सबॉर्डिनेशन ऑफ द लॉर्ड। और फिर ऐसे जो जीव हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, यहाँ इस श्लोक में बहुत ही सुंदर एक शब्द का उपयोग किया है विदुर जी ने, और वो है अनुग्रहा। ये है भगवान के भक्त जो भव्यानी, भव्यानी यानी जो फिलंथ्रोपिक है, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं, वे भगवान के भक्त, भगवान जनार्दन के भक्त। जनार्दन इस शब्द का अर्थ है जो सबका पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो यहां पे बताते हैं कि वे भगवान के शुद्ध भक्त चरन्ति नूनम, सही रूप से इस धरती पर विचरण इसलिए करते हैं ताकि जो बद्ध जीव है उन जीवों को भगवान के सम्मुख लेके आए। वैसे जीवों की स्थिति क्या है यहाँ पे, कृष्णाद विमुखस्य, भगवान के विमुख है। देखिए भगवान के शुद्ध भक्तों के मन की स्थिति कैसे एक जैसी रहती है। अगर आपने सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं पढ़ी होंगी तो वहां पे भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चेतः, आपके गुणों का गुणगान करने के लिए मेरा मन, मेरी मेरे जो चित्त है वो पूरी से मंत्र मुग्ध है, उसमें वो पूरी तरह से व्यग्र है। शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए दुखी हूं जो विमुख चेतसा है, जो आपसे विमुख, जिन्होंने अपने मन को रखा हुआ है। भगवत विमुख जो लोग हैं उन लोगों को भक्ति प्राप्त करने के लिए अगर मैं कुछ मदद करूं तो वो सबसे बड़ा हित होगा। और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे विदुर जी उद्धव मैत्रेय जी को बोल रहे हैं कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो सबका भला चाहते हैं, वे इसीलिए सर्वत्र विचरण करते हैं ताकि जो भगवत भक्ति से विमुख लोग हैं उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो सके। क्योंकि साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जैसे चैतन्य चेतामृत में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लव मात्र ही अत्यल्प भी अगर साधुओं का संग कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। और वो क्या है, जीवन की समसिद्धि क्या है, भागवत की भाषा में सम सिद्धिर हरितोषणम, भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना। और भगवान श्री हरि प्रसन्न किससे होते हैं, जब जीवात्मा उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। और जीवात्मा शरण ग्रहण कब कर लेता है, जब उसके ऊपर किसी भगवत भक्त का अनुग्रह हो जाता है। और भगवान का भगवत भक्तों का अनुग्रह कब होता है, जब हम उनसे संग करते हैं। तो आगे जाके हम फिर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से स्वयं विदुर जी मैत्रेय ऋषि का आश्रय लेकर उस भगवत ज्ञान को फिर से प्राप्त कर लेते, जो कि हालांकि उनके पास है, लेकिन आप और हम जैसे जद्द जीवात्माओं को वो समझे, इसलिए यहाँ पे वे एक अभिनय करते हैं और पृछा करते हैं, हर बार प्रश्न पूछते हैं उनके कि ये ऐसे क्या, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। हालांकि वे किनके शिष्य थे, साक्षात वेदव्यास जी के, विदुर जी, उनसे उन्होंने पूरा न्याय नीति शास्त्र सारा सीखा हुआ था। मैत्रेयमणि पराशर ऋषि के शिष्य, जो वेदव्यास जी के पिताजी हैं। क्योंकि ज्ञान में थे ना, ज्ञान मिश्र भक्ति थी उनकी। किसका क्या वे भी ज्ञान मिश्र, इवन सुखदेव गोस्वामी भी ज्ञान मिश्र भक्ति। क्योंकि जब तक भक्तों का संग नहीं प्राप्त होता है और उनके अनुग्रह से भक्ति को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक यही स्थिति है हमारी रहती है। इसलिए आवश्यक है कि इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से जाने समझें, इनके ऊपर चर्चा हो, उनको समझने का अगर हम प्रयास करें तभी यह हो सकता है। अन्यथा शरणम नास्ति, नहीं तो फिर कहीं पे भी हमें शरण नहीं प्राप्त होता। इस भौतिक जगत में केवल दुख ही दुख प्राप्त होता। हरे
कृष्ण। प्रश्न था
स्थिति यही है ना, हम कहाँ से गिर पड़े,
तो भगवान के नाम से।
हाँ। उससे और पवित्र जगह कोई है, अगर जीव का पतन वहां से हो सकता है, क्यों, जब वो भगवान से विरोध कर लेता है, बंड कर लेता है, भगवान को छोड़ के अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने लगता है, वो किसी की नहीं सुनता, भगवान की स्वयं नहीं सुनता है तो आज किसी की सुनेगा। और हस्तिनापुर में तो वही हाल था ना, हस्तिनापुर में विदुर जी थे, पितामह भीष्म महाजनों में से एक थे। और हमने कहा, सुनते हैं हम कि महाजनों इन गता सपनता, महाजनों के चरणों का अनुगमन करेंगे तो भगवत भक्ति सिद्धांत धर्म को पालन कर सकते हैं, लेकिन कौरवों ने किया नहीं ना। घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हो, जबरदस्ती पिला नहीं सकते, उसकी इच्छा होगा तो पिएगा। तो दुर्योधन आदि कौरवों की इच्छा ही नहीं थी, कि कुछ अच्छा सीखे, कुछ अच्छा करे, तो कहाँ से करे? जैसे उदाहरण दिया जाता है, काशी में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति काशी में जाता है और मणिकर्णिक घाट पर जाकर स्नान कर लेता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो फिर पार्वती माता जो कि दुर्गा देवी है, वे कहती है कि अगर सारे आके आपके यहाँ पर स्नान करेंगे पाप से मुक्त हो जाएंगे, तो फिर मेरा कार्य क्या बचा, मैं किसको फिर संभालूं? तो बोलते ठीक है, चलो आगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें कितने लोग गंगा में स्नान करने के पश्चात पवित्र हो जाते। तो उन्होंने एक कोड़ी व्यक्ति का रूप धारण किया, कुष्ठ रोगी, और पड़े रहे वहाँ पे तट पे। और पार्वती माता ने एक सुंदर युवा स्त्री का रूप धारण किया और वे उनके बाजू में खड़े हैं। और फिर वो आने जाने वाले जो व्यक्ति घाट पे जाके स्नान करके ऊपर आते थे तो उनको पूछती थी हाथ जोड़ के कि देखिए मेरे पति को कोढ़ हुआ है, कुष्ठ हुआ है। उससे वो तभी मुक्त हो सकता है जब कोई पुण्यात्मा इनको स्पर्श करे या आलिंगन करे। तो कृपया आप अभी अभी गंगा जी में स्नान करके आए हो तो निश्चित रूप से पुण्यवान बने हो, सारे पापों से आप मुक्त हो, तो कृपया आके आलिंगन कीजिए। कोई नहीं करता था, सब घृणा करके वहाँ से चले जाते थे। कई लोगों ने तो इच्छा की कि उसको क्यों हम तुम्हें आलिंगन कर लेते। लेकिन एक छोटा बालक था, वो देखा 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 और फिर बाद में झट से चला गया, गंगा जी में स्नान किया और आके फिर उस कोड़ी व्यक्ति को उन्होंने आलिंगन किया और उसका कुष्ठ चला गया। अब तब शिव जी ने माता पार्वती को बताया, देखा इतने लोगों ने स्नान किया लेकिन केवल ये एक व्यक्ति है जिसको पूरी तरह से विश्वास है कि वह सारे पापों से मुक्त हुआ है, यह व्यक्ति केवल पाप से मुक्त हुआ। तीर्थ तो सबको समान रूप से देने के लिए बैठे लेकिन आपकी लेने की क्षमता नहीं है, तो कैसे करें? इसलिए विदुर जी तो वहां थे और उन्होंने कहा भी धृतराष्ट्र को, वो दुर्योधन के पैदा होते ही बोला ये वंश का नाश कर देगा, एक कुराड़ी के डंडे जैसा, इसको अभी खत्म कर दो। तभी माना नहीं उन्होंने। उसके पश्चात ये द्यूत क्रीड़ा शुरू होने से पहले विदुर जी ने कहा था कि ये धर्म के अनुसार नहीं है कि आप राज्यसभा में बैठ के द्यूत खेल रहे हो और वो भी सारे अपने गुरुजनों कुल के प्रधान व्यक्तियों के सामने, ये दुराचार है, मत करो। सुना नहीं उनका किसी ने। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।